नमस्कार, आप सुन रहे हैं संयुक्त राष्ट्र समाचार सचिन गौर से। 1 फरवरी 2019 के इस बुलेटिन में शामिल हैं। भूमध्य सागर के जरिए यूरोप में शरण लेने का सफर साबित हो रहा है जानलेवा। पिछले साल हर दिन समुद्री रास्ते में हुई औसतन 6 मौतें। हिंसा और आपात हालात में रह रहे लाखों बच्चों की सुरक्षा और सलामती के लिए यूनिसेफ की $3.9 अरब की अपील। यहूदियों के सामूहिक नरसंहार के पीड़ितों की स्मृति में आयोजित कार्यक्रमों में बढ़ते यहूदीवाद विरोध पर चिंता, सार्वभौमिक मूल्यों के प्रसार और जागरूकता पर बल, और रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी की अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की शुरुआत हुई। अब समाचार विस्तार से। सुरक्षित जीवन की तलाश में भूमध्य सागर को पार कर यूरोप पहुंचने की कोशिश करना सैकड़ों लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी ने अपनी एक नई रिपोर्ट में इसे दुनिया में सबसे घातक समुद्री रास्ता बताया है। एजेंसी का कहना है कि पिछले साल इस रास्ते को पार करते समय हर दिन औसतन 6 लोगों की मौत हुई। 2018 में भूमध्य सागर पार करने की कोशिश कर रहे 2200 से ज्यादा लोग या तो डूब गए या फिर लापता हो गए, और यह ऐसे समय में हुआ जब यूरोप में शरण या काम की तलाश में आने वाले लोगों की संख्या में भारी कमी आई है। 2018 में करीब 1,40,000 शरणार्थियों और प्रवासियों ने यूरोप का रुख किया, जो पिछले 5 सालों में सबसे कम संख्या है। पिछले साल कुछ दक्षिणी यूरोपीय देशों ने अपनी नीतियों में बदलाव किए हैं। कई बार नावों को आने की अनुमति नहीं दी जाती और लोग बीच समुद्र में फंसे रहते हैं। स्वैच्छिक संगठनों के कार्यकर्ताओं और बचाव नौकाओं पर भी बंदिशें लगाई जा रही हैं। यूएन एजेंसी के उच्चायुक्त फिलिपो ग्रैंडी का कहना है कि यूरोप पहुंचने का सफर बुरे सपने जैसा है, जिसमें लोगों को यातना, बलात्कार, यौन हिंसा, अपहरण और फिरौती जैसे खतरों से जूझना पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने कहा है कि कई देशों में बच्चों को हिंसक संघर्षों, आपदाओं और अन्य आपात परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे हालात में रह रहे लाखों बच्चों को तत्काल सुरक्षा दिए जाने की आवश्यकता है। यूनिसेफ ने दुनिया भर में राहत कार्य में मदद के लिए $3.9 अरब की अपील जारी की है। बच्चों की मदद के लिए जारी इस अपील से 59 देशों को सहायता दी जा सकेगी। एजेंसी का लक्ष्य 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों को स्वच्छ पानी, भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और संरक्षण प्रदान करना है। बाल संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए जिन देशों में मदद चाहिए उनमें सीरिया, यमन, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य और वेनेजुएला प्रमुख हैं। दुनिया भर में यहूदीवाद विरोध खतरनाक ढंग से उभर रहा है, जिससे चिंताएं बढ़ रही हैं। दूसरे विश्व युद्ध में यहूदियों के सामूहिक नरसंहार के पीड़ितों की स्मृति में यूएन मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय स्मरण दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने अपनी बात रखी है। महासचिव गुटेरेश ने कहा कि अमेरिका में यहूदी उपासना स्थलों पर घातक हमले से लेकर यूरोप में यहूदियों की कब्रगाहों में तोड़फोड़ हुई है। शताब्दियों से चली आ रही नफरत अब भी न सिर्फ बनी हुई है, बल्कि स्थिति बदतर होती जा रही है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे द्वितीय विश्व युद्ध की याद धुंधली पड़ती है और होलोकॉस्ट में बच गए यहूदियों की संख्या कम होती है, सतर्क बने रहने की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इसी अवसर पर यहूदी शरणार्थियों के नाथसी जर्मनी से बचकर भारत में शरण लेने पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। विशेषज्ञ और लेखक डॉक्टर केनेथ रॉबिन्स ने इतिहास के इस पन्ने पर अहम जानकारी साझा की।
India is the only country in the world where Jewish life has not been defined largely by anti-Semitism.
दुनिया में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां यहूदी जीवन यहूदीवाद के विरोध से प्रभावित नहीं हुआ है। आमतौर पर यहूदियों के लिए यहां जीवन सकारात्मक रहा है और लंबे समय से अलग अलग जगहों पर समुदाय फला फूला है। डॉक्टर रॉबिन्स ने बताया कि यहूदी समुदाय भारत आया और फिर यहाँ समाज में आसानी से रच बस गया।
There was a definite chemistry, and a lot of very positive things. The most positive thing is the story of Jews and the art scene that they helped create in Bombay.
बिल्कुल, स्थानीय लोगों के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे थे। सबसे सकारात्मक पहलू यहूदी समुदाय का मुंबई के कला क्षेत्र में उनका योगदान है। यहाँ यहूदियों ने मुख्य तौर पर प्रगतिशील कला आंदोलन को पोषित किया और कलाकारों को आगे बढ़ने में मदद की। आरा रजा भारत के 2 महानतम चित्रकारों में गिने जाते हैं। माखदा नाखमन बेहद जानी मानी कलाकार है और अपनी रचनाओं में उन्होंने खूबसूरती के बजाय भारत के मूल اس کی آتما کو کینوس پر اتارا ہے۔ ڈاکٹر رابنز کے شبد۔ کانگو لوک تانترک گن راجیہ کے پشچمی حصے میں بڑے پیمانے پر ہنسا میں 535 لوگوں کے مارے جانے کی بات سامنے آئی ہے۔ ہنسا پچھلے سال دسمبر مہینے میں ہوئی اور اب سنیکت راشٹر کی پرارمبھک جانچ میں کئی ستھانوں پر لوگوں کو دفنائے جانے کا پتا چلا ہے۔ کانگو میں استھائیتو قائم کرنے کے لیے کام کر رہے سنیکت راشٹر مشن کے انوسار یہ ہتیائیں سنیوجت ڈھنگ سے کی گئی۔ ہنسا بہت زیادہ اور تیزی سے ہوئی اور لوگوں کے پاس بھاگ کر جانے کا موقع نہیں تھا۔ اس سے پہلے پچھلے سال سنیکت راشٹر مانوادھیکار پرمکھ مشیل باشلٹ نے کہا تھا کہ انہیں وشوسنیہ رپورٹیں ملی ہیں کہ یومبی میں سینکڑوں لوگوں کی سامودائک ہنسا میں موت ہوئی ہے۔ 16 دسمبر کو شروع ہوئی یہ ہنسا کئی دنوں تک چلی تھی۔ بنونو سمودائے سے سمبند رکھنے والے ایک پرمکھ کی موت کے بعد انہیں دفنائے جانے کے معاملے پر وواد ہوا اور اس کے بعد ہنسا ہوئی۔ وہیں پوروی کانگو میں گھاتک ایبولا وائرس بڑے پیمانے پر پھیل رہا ہے۔ 6 مہینے پہلے یہ وائرس پھیلنا شروع ہوا۔ 740 سے زیادہ لوگ اس سے گرست ہیں اور 460 کی موت ہو چکی ہے۔ استھانیہ پرشاسن اور یو این ایجنسیاں پیڑتوں کی مدد کے لیے ابھیان کا استر ویاپک کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ سنیکت راشٹر شیکشک ویگیانک ایوم سانسکرتک سنگٹھن کے پیرس مکھیالے میں ایک کاریکرم میں رسائنک تتووں کی آورت سارنی کے انتراشٹریہ ورش کی آدھیکارک شروعات ہو گئی ہے۔ اس دوران پورے سال دنیا بھر میں کئی کاریکرم اور گتیویدھیوں کا آیوجن کیا جائے گا۔ آورت سارنی کا نرمان روسی ویگیانک دمتری مینڈلیف دوارا کیے جانے کے 150 سال پورے ہونے پر یہ سال منایا جا رہا ہے، جس کے ذریعے آورت سارنی کی اہمیت کو سمجھایا جائے گا اور اس کے پرتی جاگرکتا پھیلائی جائے گی۔ تو آج کے اس بلٹن میں اتنا ہی۔ مجھے انمتی دیجیے، نمسکار۔